नमस्कार ज्ञान गोष्ठी में। आज हम 20वीं सदी की एक बेहद प्रभावशाली विचारक सिमोन द बोवार के जीवन और उनके विचारों की दुनिया में उतर रहे हैं।
जी हाँ, सिमोन द बोवार एक ऐसा नाम जिसने न सिर्फ आधुनिक नारीवाद की, कह सकते हैं, नींव रखी, बल्कि अस्तित्ववादी सोच को भी एक नई दिशा दी।
बिल्कुल, और उनकी सोच आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती है ना?
यकीनन, आज भी उनके विचार हमें सोचने पर मजबूर करते हैं।
तो आज हम कोशिश करेंगे बोवार के कुछ अहम विचारों को समझने की, जैसे स्वतंत्रता, जिम्मेदारी और खासकर उनकी वो अवधारणा कि स्त्री को अन्य यानी दी अदर की तरह देखा जाता है।
हाँ, और हम उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पड़ावों और उनकी खास किताबों पर भी नजर डालेंगे। ये समझना जरूरी है कि उनके विचार कहाँ से आए। चलिए वहीं से शुरू करते हैं। वो दौर कैसा था जब बोवार सोच रही थीं, लिख रही थीं? मतलब 1908 से 1986 तक का समय। यूरोप में तो काफी उथल पुथल थी।
हाँ, बहुत ज्यादा। सोचिए, दो विश्व युद्ध, फासीवाद का उदय, उपनिवेशवाद का अंत, और पेरिस उस समय जैसे विचारों का केंद्र था।
अच्छा।
हाँ, अस्तित्ववाद की लहर चल रही थी। ये सोच के इंसान पहले दुनिया में आता है, फिर अपने कर्मों से खुद को बनाता है। कोई पहले से तय भाग्य नहीं।
मतलब सब कुछ व्यक्ति की अपनी चॉइस पर है।
काफी हद तक इसी पर बहसें होती थीं। साथ में मार्क्सवाद, फ्राइड का मनोविश्लेषण, ये सब हवा में था। और वो जो मशहूर कैफे थे ना, कैफे द फ्लोर, लिद मागो,
हाँ सुना है।
वो सिर्फ कॉफी पीने की जगह नहीं थे, वो विचारों की प्रयोगशालाएं थे। वहीं नए आइडियाज पनपते थे।
और इसी माहौल में उनकी मुलाकात जॉन पॉल सार्त्र से भी हुई,
जो उनके आजीवन साथी रहे।
बिल्कुल, सार्त्र तो सबसे महत्वपूर्ण थे ही, लेकिन उन पर हेगल का भी काफी असर था। खास तौर पर हेगल का वो मास्टर स्लीव डायलेक्टिक, वो स्वामीदास वाला सिद्धांत।
हाँ, कि कैसे एक चेतना खुद को दूसरे के विरोध में या दूसरे के जरिए पहचानती है। बोवार ने इसी को पुरुष स्त्री संबंध पर लागू किया।
ये तो दिलचस्प है। और कौन थे?
हुसर्ल थे, उनकी फिनोमिनोलॉजी मतलब अनुभव को सीधे समझने की कोशिश, मार्क्स के विचार थे, और नारीवादी लेखिकाएं भी जैसे वर्जीनिया वुल्फ, इन सब का असर उनके काम में दिखता है।
उनके शुरुआती जीवन के बारे में कुछ बताइए। वो पेरिस के एक मध्यमवर्गीय परिवार से थी, है ना?
जी, और शुरुआत में काफी धार्मिक भी थीं, लेकिन टीनेज में आते आते उनका विश्वास डगमगाया और वो नास्तिक बन गईं। ये उनके लिए एक बड़ा कदम था अपनी सोच को आजाद करने की तरफ।
और पढ़ाई?
परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन सिमोन पढ़ने में बहुत तेज थीं। उन्होंने सॉर्बोन यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी पढ़ी, और कमाल की बात यह है कि सिर्फ 21 साल की उम्र में।
21 साल?
हाँ, 1929 में उन्होंने फ्रांस की सबसे मुश्किल फिलॉसफी परीक्षा आग्रेगासियो पास कर ली। वो उस वक्त सबसे कम उम्र की महिला थीं ये करने वाली।
वाह, और यही उनकी मुलाकात सार्त्र से हुई।
जी हाँ, एक और नॉर्मल सुपीरियर में। सार्त्र उस परीक्षा में फर्स्ट आए थे और बोवार सेकंड।
उनका रिश्ता भी काफी चर्चा में रहा, वो पारंपरिक नहीं था।
बिल्कुल नहीं, उन्होंने उसे आवश्यक प्रेम कहा जो उनके बीच मुख्य था, पर साथ ही उन्होंने आकस्मिक संबंधों की भी बात की। न कभी शादी की, न कभी एक छत के नीचे रहे।
ये उनके अपने स्वतंत्रता बनाए रखने का तरीका था।
हाँ, कह सकते हैं। हालांकि इस पर बाद में काफी सवाल भी उठे, नैतिक बहसें भी हुई।
फिर दूसरा बड़ा मोड़ आया द्वितीय विश्व युद्ध और नाजी कब्जे के वक्त।
उसने उनकी सोच पर क्या असर डाला?
उसने उनकी राजनीतिक चेतना को मजबूत किया। उन्हें लगा कि बुद्धिजीवियों का काम सिर्फ सोचना या लिखना नहीं है, उन्हें समाज से जुड़ना होगा, अन्याय के खिलाफ बोलना होगा।
और इसी वजह से उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया। वो पहले पढ़ाती थी ना? हाँ, 1931 से 43 तक पढ़ाया, फिर 1945 में सार्त्र के साथ मिलकर वो मशहूर पत्रिका शुरू की, ले टॉ मॉडर्न,
आधुनिक समय।
जी, ये लेफ्ट विंग विचारों का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन गई। और फिर युद्ध के बाद तो उन्होंने खुद को पूरी तरह लिखने और एक्टिविज्म में झोंक दिया। अल्जीरिया युद्ध का विरोध, छात्रों का समर्थन, महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई, खासकर गर्भपात के अधिकार के लिए वो हमेशा आगे रहीं।
चलिए अब उनकी सबसे मशहूर और शायद सबसे महत्वपूर्ण किताब पर आते हैं, द सेकेंड सेक्स, 1949। इसे आज भी नारीवाद का फाउंडेशनल टेक्स्ट माना जाता है। ऐसा क्या खास था इसमें?
देखिए, ये किताब एक धमाका थी, सिर्फ फ्रांस में नहीं पूरी दुनिया में। दो वॉल्यूम्स में आई थी ये। बोवार ने इसमें इतिहास, बायोलॉजी, मिथक, साहित्य, फिलॉसफी सब का इस्तेमाल किया ये दिखाने के लिए कि जिसे हम औरत कहते हैं वो कोई प्राकृतिक या बायोलॉजिकल चीज नहीं है, वो समाज द्वारा, संस्कृति द्वारा बनाई जाती है। यहीं से उनका वो सबसे प्रसिद्ध कोट आया,
One is not born, but becomes a woman.
बिल्कुल, कोई स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है। ये उस वक्त के लिए एक जबरदस्त रेडिकल विचार था।
इसका मतलब है कि औरतपन या फेमिनिटी कोई अंदरूनी गुण नहीं है, बल्कि ये वो भूमिकाएं और अपेक्षाएं हैं जो समाज हम पर डालता है।
सही समझा आपने। उन्होंने तर्क दिया कि पितृसत्ता ने पुरुष को मानक यानी सब्जेक्ट या कर्ता बना दिया है और स्त्री को उसके मुकाबले में अन्य या दूसरा, दी अदर,
ऑब्जेक्ट की तरह।
हाँ, एक तरह से ऑब्जेक्ट जिसकी पहचान पुरुष के संदर्भ में तय होती है। ये वही हेगल वाला मास्टर स्लेव का रिश्ता है जिसे उन्होंने जेंडर पे लागू किया। समाज स्त्री को उसकी पूरी मानवता, उसकी स्वतंत्रता, उसके कर्ता बनने की क्षमता से वंचित रखता है और उसे शाश्वत स्त्रीत्व जैसे झूठे आदर्शों में फंसा देता है।
ये तो वाकई सोच बदलने वाली बात थी। उनकी एक और महत्वपूर्ण किताब है The Ethics of Ambiguity, 1947। इसमें नैतिकता की बात है। ये सार्त्र के विचारों से कैसे जुड़ी थीं या अलग थीं?
कि बोआर की अपनी एक मौलिक दार्शनिक आवाज थी। सार्त्र का जोर जहां पूरी तरह स्वतंत्रता पर था, एब्सोल्यूट फ्रीडम पर,
हाँ।
वहीं बोआर ने कहा कि हमारी स्वतंत्रता हमेशा स्थिति जन्य होती है, सिचुएटेड।
ओके।
मतलब हम आजाद तो हैं, पर हमारी आजादी हवा में नहीं तैरती, वो हमारे परिस्थितियों से जुड़ी है, हमारा शरीर, हमारा समाज, हमारा इतिहास।
मतलब एक तरह की अस्पष्टता या द्वंद्व हमेशा रहता है।
बिल्कुल, इसी एम्बिग्विटी को स्वीकार करना उनके हिसाब से मानवीय होने का सच है। और नैतिक होना क्या है? नैतिक होना है अपनी स्वतंत्रता को चुनना, उसकी जिम्मेदारी लेना और साथ ही दूसरों की स्वतंत्रता को भी संभव बनाना, खासकर उनकी जो दबे हुए हैं।
तो ये एक तरह से ज्यादा व्यावहारिक नजरिया था स्वतंत्रता का, सिर्फ अमूर्त विचार नहीं।
हाँ, कह सकते हैं। उन्होंने स्वतंत्रता को ठोस जीवन स्थितियों से जोड़ा और यही उन्होंने महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण किया कि कैसे सामाजिक ढांचे उनकी स्वतंत्रता को सीमित करते हैं, उन्हें अन्य बनाते हैं।
इसके अलावा उनके उपन्यास भी हैं, जैसे द मैंडरिन।
जी, ले मैंडरिन्स। उसे प्रिक्स कॉन्कॉर्ड पुरस्कार भी मिला था। वो युद्ध के बाद के फ्रेंच बुद्धिजीवियों की नैतिक और राजनैतिक उलझनों को दिखाता है और उनकी आत्मकथा मेमोर्स ऑफ अ ड्यूटीफुल डॉटर,
हाँ, वो भी काफी प्रसिद्ध है।
वो उनके बचपन, उनके धार्मिक माहौल से निकलने और एक स्वतंत्र विचारक बनने की कहानी है। और ए वेरी इजी डेथ में उन्होंने अपनी माँ की मृत्यु के अनुभव को बहुत गहराई से लिखा है।
जब द सेकंड सेक्स छपी तो उसका स्वागत कैसे हुआ? क्या लोगों ने तुरंत उसकी अहमियत समझ ली?
अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरू में तो जबरदस्त विरोध हुआ, हंगामा मच गया।
अच्छा, क्यों?
खासकर महिला कामुकता पर उनकी खुली चर्चा और शादी, चर्च जैसी संस्थाओं की तीखी आलोचना के लिए। वैटिकन ने तो उसे बैन ही कर दिया। बहुत से लोगों ने उसे अनैतिक कहा, परिवार विरोधी कहा, उन्हें गालियां तक दी गईं।
बाप रे।
हाँ, लेकिन धीरे धीरे, खासकर 60 और 70 के दशक में जब महिला आंदोलन तेज हुए, तब नारीवादियों ने इस किताब को अपनाया और फिर तो ये दुनिया भर में एक तरह से नारीवादी आंदोलनों का घोषणा पत्र बन गई।
और आज उनके विचार कितने प्रासंगिक हैं? क्या वो अन्य बनाने वाली बात आज भी लागू होती है?
मुझे तो लगता है आज और भी ज्यादा लागू होती है। ये अन्य बनाने की प्रक्रिया सिर्फ मर्द औरत के बीच नहीं है। आप देखिए, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, यौनिकता, सेक्सुअलिटी के आधार पर।
हाँ, ये तो है।
समाज कैसे किसी समूह को हमसे अलग करके वो बना देता है, उन्हें कमतर आंकता है, उनके अधिकार छीनता है। ये आज भी दुनिया भर में हो रहा है।
तो बोवार का विश्लेषण हमें इन चीजों को समझने में मदद करता है।
बिल्कुल। और उनकी ये बात कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामूहिक मुक्ति, या कहें सामूहिक जिम्मेदारी, एक दूसरे से जुड़े हैं, ये आज भी सामाजिक न्याय के आंदोलनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जेंडर स्टडीज हो, क्वियर थ्योरी हो, या इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म, भाव के अलग अलग रूप जैसे लिंग, जाति, वर्ग कैसे एक दूसरे से गुंथे हुए हैं और किसी व्यक्ति के अनुभव को कैसे प्रभावित करते हैं, इन सब आधुनिक विचारों की जड़ें कहीं ना कहीं बुआर के काम में मिलती हैं।
चलिए उनके कुछ मशहूर कथनों पर दोबारा नजर डालते हैं। स्त्री पैदा नहीं होती, बना दी जाती है। इसका असर तो आज भी बहुत गहरा है।
जी हाँ,
ये हमें लगातार याद दिलाता है कि जिसे हम नेचुरल या बायोलॉजिकल मान लेते हैं वो अक्सर समाज की देन होता है। जेंडर एक सामाजिक संरचना है जिसे हम रोजमर्रा के जीवन में नियमों, उम्मीदों, व्यवहारों से मजबूत करते रहते हैं।
एक और कथन है जो सोचने पर मजबूर करता है, उत्पीड़क उतना शक्तिशाली नहीं होता यदि उत्पीड़ितों के बीच ही उसके इच्छुक साथी ना होते।
ये बहुत गहरी और थोड़ी असहज करने वाली बात है। ये इशारा करती है इंटरनलाइज्ड ऑप्रेशन की तरफ।
मतलब जब उत्पीड़ित लोग खुद ही उन विचारों को अपना लेते हैं जिनसे उनका दमन होता है।
हाँ, कुछ वैसा ही कि कैसे कभी कभी दमनकारी व्यवस्थाएं इसलिए भी चलती रहती हैं क्योंकि जिन्हें दबाया जा रहा है वो जाने अनजाने उन विचारों को सच मान लेते हैं और व्यवस्था का हिस्सा बन जाते हैं। ये बहुत जटिल प्रक्रिया है।
और स्वतंत्रता पर उनका नजरिया, आपने कहा वो उसे स्थिति जन्य मानती थी।
हाँ, वो कहती हैं द एथिक्स ऑफ एम्बिग्यूटी में कि स्वतंत्र होने का मतलब ये नहीं है कि आप जो चाहें वो करने की शक्ति रखते हैं। इसका मतलब है कि आप दिए गए से परे एक खुले भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। मतलब आज़ादी का मतलब बेलगाम होना नहीं है, बल्कि अपनी सीमाओं को पहचानना, उन्हें चुनौती देना और जिम्मेदारी के साथ अपने जीवन का अर्थ खुद गढ़ना है। ये एक लगातार चलने वाला प्रोजेक्ट है।
जाहिर है, इतने प्रभावशाली विचारक की आलोचना भी हुई होगी। क्या मुख्य आलोचनाएं रहीं बुवार की?
हाँ, बिल्कुल हुई। बार्ट के कुछ नारीवादी विचारक, खासकर तीसरी लहर की और पोस्ट कॉलोनियल विचारक, उन्होंने कहा कि द सेकंड सेक्स काफी हद तक एक श्वेत पश्चिमी मध्यम वर्गीय महिला के अनुभव पर केंद्रित है।
अच्छा, कि वो दूसरी महिलाओं के अनुभवों को नजरअंदाज करती है।
हाँ, कि वो उस अनुभव को जैसे सार्वभौमिक बना देती हैं। फिर कुछ ने ये भी कहा कि उनका लक्ष्य अगर पुरुषों के बराबर होना है तो क्या ये अनजाने में पुरुष को ही मानक नहीं मान लेता।
हाँ, ये भी एक सोचने वाली बात है।
और उनके निजी जीवन पर भी काफी बहस हुई। सार्त्र के साथ उनका रिश्ता, उनकी छात्राओं के साथ उनके संबंध, इन पर नैतिक सवाल उठाए गए। और ये बहस तो चलती ही रहती है कि उनके अपने विचार कितने मौलिक थे और सार्त्र का कितना प्रभाव था।
उनके जीवन से जुड़ा कोई दिलचस्प किस्सा?
एक तो उनका निकनेम था लीकोस्टोर, यानी उदबिलाओ, द बीवर। उनके दोस्त उन्हें ये कहते थे, सार्त्र ने भी ये नाम अपनाया। एक तो ये उनके सरनेम बुवार से मिलता जुलता है, दूसरा उनके काम करने के अंदाज की वजह से, उदबिलाओ की तरह मेहनती।
अच्छा।
और वो और सार्त्र पेरिस के मॉन्ट पार्ने से कब्रिस्तान में एक ही कब्र में दफन है। वो जगह आज भी नारीवादियों के लिए एक तरह की तीर्थ जैसी है। और एक और बात, उन्होंने फ्रांस का सबसे बड़ा सम्मान लीजन ऑफ ऑनर लेने से इनकार कर दिया था।
सिमोन द बुवार ने हमें सिखाया कि कैसे सामाजिक ताकतें हमारी पहचान बनाती हैं, हमारी स्वतंत्रता को सीमित करती हैं, खासकर उनकी जिन्हें समाज अन्य मान लेता है।
बिल्कुल। और आज की दुनिया में जहाँ पहचान की राजनीति, सामाजिक न्याय, बहिष्करण, एक्सक्लूजन के मुद्दे इतने अहम हैं, ये सोचना जरूरी है कि ये अन्य बनाने की प्रक्रिया आज किन नए रूपों में सामने आ रही है।
मतलब?
जैसे सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग या किसी खास समुदाय को टारगेट करना।
हाँ, वो भी हो सकता है। या अर्थव्यवस्था में असमानता, राजनीतिक ध्रुवीकरण, कैसे ये सब भी लोगों को हम और वो में बांटते हैं। बुवार के विचार हमें इन आज की चुनौतियों को समझने का एक फ्रेमवर्क देते हैं। और ये सवाल हमेशा रहता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामूहिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। सिमोन द बुवार के विचारों की इस गहरी और जरूरी पड़ताल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। आरंभिक कथन, नरेटर। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।